जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
All the earth and air, with thy voice is loud, as when the night is fair, from one lonely cloud, the moon rains out her beams, and heaven is overflowed. Sari dharti aur akash, teri dhani se gunj uthi hai. जैसे कोई अंधेरी रात में किसी एक अकेले बादल से चांद अपनी किरणें बरसाए और पूरा आकाश उजाले से भर जाए। शेली उस पक्षी से कहता है, हे पक्षी, ओ स्काईलार्क। उस मैना से कहता है कि तेरी ध्वनि इतनी व्यापक है कि संपूर्ण धरती और संपूर्ण आकाश में यह आवाज गूंज रही है, जैसे जैसे एक अनसुनी रात है, अंधेरी रात है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जैसे किसी बादल के पीछे चांद हो और उस चांद की किरणें चारों तरफ फैल रही है। ध्वनि फैल रही है, जैसे ध्वनि फैलती है वैसे संकल्प भी फैलते हैं। एंड द हेवन इज ओवरफ्लोड, धरती आकाश स्वर्ग सब कुछ उस ध्वनि से भर गया है। संकल्प तरंगे हैं और वो फैलते हैं, किरणें, तरंगे, रेज, लेजर बीम्स, रश्मियां, कंपन, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, ऊर्जा, एनर्जी, इन्हीं से ये संसार बना हुआ है। मुरली जो चली थी 20 तारीख को, जनवरी मास 1990, ब्रह्मा बाप के 5 कदम। पहला सर्वंश त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी, तीसरा वफादार, चौथा विश्व सेवाधारी और पांचवा कर्मबंधन मुक्त फरिश्ता। ये मुरली जब यहाँ चली ओम शांति भवन में 1990 में, ज्योति बहन थे, अभी कहाँ है पता नहीं, पर शायद मुलुन सेंटर से के कनेक्शन से थे। उनकी टीम ने बाबा आने से पहले वहाँ बैठकर एक गीत गाया था, ज्ञान सूर्य की किरणें चमक रही है, खुशी अनोखी छाई। दादी बैठे थे और वे बाबा की पधरामनी होने वाली थी उससे पहले। खुशी अनोखी छाई, वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे, अपने बच्चों के सम्मुख आके ज्ञान की मुरली सुनाने, मीठे बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। सूरत रूहानी देख के खुशियाँ छाई है तन मन में, रूहानी नशा चढ़ा है सबके जीवन के उपवन में, बरस रहे हैं जैसे फूल वतन से, मिलन मधुर मनाने वतन से बाबा पधारे। सूक्ष्म वतन है मधुबन जो बन गया है साकार में, साथ ही रहना चाहे बच्चे सदा आपके प्यार में, दूर देश के रहने वाला आए हम बच्चों को ले जाने वतन से बाबा पधारे। तो मुरली को पढ़ते समय क्या करना है, उस कालखंड में प्रवेश। तो सभी स्थिर, बाबा दादी बैठे हैं, गीत बज रहा है, वो बहन जी और दूसरे भाई और एक भाई तबला पर है, ये तीन लोग बैठे हैं, गीत बज रहा है और बाबा की पधरामनी उस गीत के बीच में हुई।
ज्ञान सूर्य की किरणें चमक रही, ज्ञान सूर्य की किरणें चमक रही।
खुशी अनोखी छाई वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। अपने बच्चों के सन्मुख आके ज्ञान की मुरली सुनाने मीठे बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। सूरत रूहानी देख के खुशियाँ छाई है तन मन में, सूरत रूहानी देख के खुशियाँ छाई है तन मन में। रूहानी नशा चढ़ा है सबके जीवन के उपवन में, रूहानी नशा चढ़ा है सबके जीवन के उपवन में। बरस रहे हैं जैसे फूल वतन से, मिलन मधुर मनाने वतन से बाबा पधारे,
वतन से बाबा पधारे।
सूक्ष्म वतन है मधुबन जो बन गया है साकार में, सूक्ष्म वतन है मधुबन जो बन गया है साकार में। साथ ही रहना चाहे बच्चे सदा आपके प्यार में, साथ ही रहना चाहे बच्चे सदा आपके प्यार में। दूर देश के रहने वाले आए, दूर देश के रहने वाले आए,
बच्चों को ले जाने
वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। सौभाग्यशाली है हम
मिलन मनाए आपके साथ में,
सौभाग्यशाली है हम मिलन मनाए आपके साथ में। संगम की घड़ियां बीते जीवन रहे तेरे हाथ में, संगम की घड़ियां बीते जीवन रहे तेरे हाथ में। बच्चों की महफिल में है आए, बच्चों की महफिल में है आए, सबको गले लगाने वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे।
स्मृति भी एक तरंग ही है, और तरंग एक स्मृति है, तरंगों में स्मृतियां है, शब्दों में, ध्वनि में यादें बसी होती है। एक छोटा बच्चा और उसकी बहन बाजार में घूम रहे होते हैं, और उस छोटी बच्ची को एक टोपी दिखती है एक दुकान में, और वो बच्ची को वो टोपी चाहिए, उसका मन आ जाता है कि मुझे ये टोपी चाहिए, और वो अपने भाई से कहती है कि ये टोपी मुझे चाहिए। दोनों गरीब है, वो छोटा भाई छोटा सा बच्चा, उसके पास पैसे नहीं है। जब वो पैसे टोपी की कीमत पूछता है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। और उसी समय एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरा घोड़ा बेकाबू हो गया है, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे मैं इनाम दूंगा। ये बच्चा देखता है कि मुझे मेरी बहन को वो टोपी दिलानी है, और वो छोटा बच्चा भागता है, घोड़ा आगे बच्चा पीछे, घोड़ा आगे बच्चा पीछे, और भागते भागते बड़ी मुश्किल से उस घोड़े को वश में कर लेता है। वो व्यक्ति घोड़े का मालिक उसे इनाम में पैसे देता है। वो बच्चा पैसे गिनता है और उतने ही पैसे लेता है जितने की वो टोपी है, और बाकी पैसे वापस कर देता है। किसी को पता है ये बच्चा कौन था? यूरोप का कौन था? दौड़ते दौड़ते वो विश्व में गति का सूत्रधार बना। मैनचेस्टर और लिवरपूल 1830 इस विश्व की सबसे पहली रेलवे लाइन। जॉर्ज स्टीफेंसन, फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है इसको। विश्व भर में जो रेलवेज है, रेल की पटरियां बिछी। इस व्यक्ति ने उसकी खोज की। टोपी के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके भीतर कोई और ही दौड़ गया। उसके जेब में पैसे नहीं थे, प्रेम था। उस व्यक्ति की आवाज, जो व्यक्ति चिल्ला रहा था, उसके लिए, दुनिया के लिए वो आवाज थी, उसके लिए अवसर, उस बच्चे के लिए। फादर ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज नहीं, विश्वभर की रेलवेज। और उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, मापदंड रेलवे की चौड़ाई का 4 फीट 8.5 इंच, वो आज तक भी वही स्टैंडर्ड है। बाकी सारी चीजें अपडेट होती रहती है। जो उसने स्टैंडर्ड किया, सभी स्टैंडर्ड को ही कहा जाता है स्टीफेंसन गेज। स्टीफेंसन गेज जो चौड़ाई है रेलवे की 4.5 इंच, 4.5 फीट 8 इंच। कुछ कुछ चीजें इस संसार में ऐसी इन्वेंट हुई है, जो जो ऐसी इन्वेंट हुई थी बस वैसी ही है। जैसे कि सेफ्टी पिन है, किसके पास सेफ्टी पिन होती है ना, वो जैसी इन्वेंट हुई थी बस वो के वही है। बाकी सारी चीजें अपडेट होती रहती है। वैसे हाँ, ये सेफ्टी पिन, ये जैसी इन्वेंट हुई थी बस ऐसी हुई थी, और आज भी ऐसे की ऐसी है, इसमें कोई चेंज नहीं। डिजाइन सेम। उस बच्चे ने बुद्धि से नहीं खोज की, उसके दिल ने खोज की। स्टीफन जॉर्ज स्टीफनसन के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड विक्टोरिया एज का ये सबसे बड़ा प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहा जिसने हर असंभव को संभव कर दिया। वो इंजीनियर था, ब्रिटिश सिविक इंजीनियर, और आज अमृत वेले बाबा भी इंजीनियर के रूप में आया है, अभियंत्रिकी, आध्यात्मिक अभियंत्रिकी। वो बता रहा है कि सेटिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ पुर्जे, कुछ कुछ जो पेच है, कुछ कुछ जो स्क्रू ड्राइवर है, वो थोड़े से ढीले हैं, कहीं मर्यादाओं का अभाव, तो कहीं मन में छिपी हुई कोई शिकायत, कोई अनैतिक इच्छा। एक नैतिक संघर्ष के साथ हर व्यक्ति जीता है, ये या वो, ऊपर या नीचे, इधर या उधर, ये करूं या वो करूं, टू बी और नॉट टू बी। तो जब तक इन मर्यादाओं की फिटिंग नहीं होगी, तब तक स्थिति की सेटिंग नहीं होगी। फिटिंग सेटिंग, फिटिंग सेटिंग, तो ये सब कौन सिखाता है? इंजीनियर। तो बाबा कौन है? डिवाइन इंजीनियर, द सुप्रीम इंजीनियर। तो अपना दिमाग अमृत वेले क्या करना है, निकालकर उसके सामने रखना है, और उससे क्या करना है, बाबा मेरी फिटिंग सही कर दो और मेरी स्थिति सेट कर दो। तो ये है आज का सबसे पहला होमवर्क, अमृत वेले क्या करना बाबा से, मेरी जो फिटिंग है उसको क्या करो, सही करो, और जो मेरे स्थिति की सेटिंग है, स्थिति को क्या कर दो, सेट कर दो। फिटिंग सेटिंग, फिटिंग सेटिंग। फिटिंग है मर्यादा, मर्यादा कोई बंधन नहीं, मर्यादा है लय है, मर्यादा है संगीत है, मर्यादा है आत्मा का स्वभाव बन जाए, उसके लिए सुरक्षा कवच है। तो जब आत्मा सहज मर्यादाओं में ढल जाती है, तो स्थिति की सेटिंग अपने आप हो जाती है। जैसे सुबह सुबह ट्रेन, अगर ट्रेन को पटरी पर डाल दी जाए तो ट्रेन अपने आप चलती रहती है, ऑटो मोड पर चली जाती है। आपने देखा होगा, यहाँ कोई पायलट है क्या? पायलट, पायलट होते हैं ना, वो फ्लाइट कैसे चलाते हैं, चलाते हैं, टेक ऑफ लेते हैं, एक बार ऊपर चली गई कि ऑटो मोड पर डाल देते हैं फिर, और फिर अपने जीवन की बातें करना चालू करते हैं एक दूसरे से, मेन पायलट एंड को पायलट। कब तक? जब तक पहले तो एक बार ऊपर चली गई फ्लाइट, फिर ऑटो मोड पे डाल देते हैं बस, फिर वो अपने आप चलती है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। उसी तरह अमृत वेले क्या करना है, पटरी पर डाल दो, फिर दिन भर वो ऑटोमेट मोड पर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो आज सबसे पहली बात जो बाबा ने कही है वो है मर्यादा है, वो क्या है, फिटिंग। अगर ये ठीक है तो सेटिंग ठीक हो जाएगी। फिटिंग है मर्यादा, सेटिंग है स्थिति, और दूसरा यदि मन धुंधला सा आकाश है तो वो स्पष्ट नहीं देख पाता। जितनी प्यूरिटी भीतर है उतना ही संवाद, उसकी तरंगे हम कैच कर सकेंगे। अमृत वेले वार्तालाप शब्दों से नहीं मौन से होता है। अनकहा संवाद है अमृत वेला। अमृत वेला क्या है? अनकहा, अनस्पोकन कॉन्वर्सेशन। शब्द बाधा है उसमें, अव्यक्त मिलन है वो। शब्द तो दीवारें हैं, जब शब्दों की दीवार गिरती है तब वास्तव में संवाद होता है। तो बाबा ने कहा कि जितनी भीतर निर्मलता है उतनी ही क्या होगी, बाप की टचिंग। क्योंकि उसकी किरणें बहुत सूक्ष्म है। यदि हम स्थूलता में बैठे शिकायतों के साथ रहेंगे, उल्हाने शिकायतें, तो उसकी सूक्ष्म ऊर्जा हम कैसे पकड़ पाएंगे? सारा ऊर्जा का खेल है। परमात्मा परम ऊर्जा है, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा की लेन देन, ऊर्जा का समन्वय, एनर्जी सिंक्रनी, एनर्जी सिंक्रनाइजेशन, सिंफनी ऑफ एनर्जी, सरगम, निर्मलता अर्थात स्वच्छ अंदर और बाहर। कोई कोई बाहर से भोले है अंदर से सपोला, बाहर से भोला और अंदर से सपोला। बाहर से दिखाते हैं परमेश्वर और भीतर से छलेश्वर। भगवान को छलकपट 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 पसंद नहीं। उसे क्या पसंद है? हृदय की निर्मलता। क्योंकि सारी महान उपलब्धियां किससे होती है? बुद्धि से नहीं, हृदय से। उस बच्चे के ब्रेन ने नहीं सुना, उसकी जेब में पैसे नहीं प्रेम था। दौड़ते 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 वो घोड़े को वश में करने के लिए नहीं दौड़ रहा था वास्तव में, वो दौड़ते दौड़ते ही उसके अंदर कुछ और ही दौड़ गया, विश्व में गति का सूत्रधार बन गया। और असंभव को संभव कर दिया। तो महान आविष्कार हृदय में होते हैं, बुद्धि में नहीं, मस्तिष्क में नहीं। महान टचिंग्स। परमात्मा एक महान इंजीनियर है, उसकी टचिंग्स निर्मल हृदय में ही होगी। ये चेतना की मशीनरी है, ज्योमेट्री ऑफ कॉन्शियसनेस, मशीनरी ऑफ कॉन्शियसनेस, इनर इंजीनियरिंग, स्पिरिचुअल री इंजीनियरिंग। अभियांत्रिकी कौन सी? आध्यात्मिक। तो आज बाबा इंजीनियर के रूप में है। यदि किसी के पुर्जे ढीले हैं, स्क्रू ढीले हैं, तो क्या करो? अपने आप को सौंप दो और कहो इसकी जरा सर्विसिंग करा दो, और जरूरत पड़े तो एडमिट भी कर दो अगर ओपीडी बेसिस पे नहीं हो रही है ट्रीटमेंट। और कुछ कुछ को तो आईसीयू की भी आवश्यकता है। सब कुछ ही गड़बड़ है। गाड़ी चलती है तो कोई कोई गाड़ियों का कितना आवाज आता है, कहीं कचरा है, कुछ तो गड़बड़ है। आज के महावाक्य, आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, भगवान भी बिजी रहता है, वो कौन सा कार्य होगा? पुर्जों को क्या करता है सुबह सुबह? मैकेनिक है वो, गराज में, परमधाम गराज, स्पिरिचुअल गराज, स्पिरिचुअल इंजीनियर, द सुप्रीम इंजीनियर। रिपेयर वर्क चलता है वहां पर, कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो। अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग और उरियान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही बिजी रहते हो। क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर रोज हर एक की सेटिंग और फिटिंग ये दोनों ही बातें देखते रहते। क्या देखते हैं? गाड़ियां है ढेर सारी। इंजीनियर क्या देखता है? ठीक से चलती है या नहीं चलती है? कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग और सेटिंग का तो आपको तो आप जानते हो। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना यह ईश्वरीय मर्यादाएं है डैश फिटिंग। इससे पहले भी किसी एग्जाम में ये एमसीक्यू आ चुके हैं। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की डैश होती है। तो स्थिति की सेटिंग और मर्यादाएं है फिटिंग। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेटिंग की फिटिंग कर रहे थे है, तो क्या देखा? कोई ना कोई बात की वह मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर और अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं। साइट अर्थात जगह, SITE। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होते हैं। थाउजेंड्स वेर कॉल्ड एंड द फ्यू वर चोजन। हजारों आए परंतु बस कुछ ही लोग चुने गए। अमृत वेला परमात्मा दरबार सचता है। तो सबसे पहला होमवर्क एक चित्र बनाना है जिसमें बाबा मैकेनिक के रूप में है और हमारा ब्रेन जो है ना हथौड़े से कहो ठीक ठाक कर रहा है। नट बोल्ट थोड़े ढीले हो गए, कुछ कुछ के तो पुर्जे ढीले हो गए और कुछ कुछ को तो रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। किसी किसी के पुर्जे ही गायब हो गए, किसी किसी के जैम है। तो बाबा से कहो ये लो मस्तिष्क, इसका ऑयलिंग करो, फिटिंग करो, सब कर दो। दूसरा, हमारे अपने तीन ऐसे कौन ढीले स्क्रू है वो लिखने। क्या लिखना है? मेरे कौन से तीन स्क्रू ढीले हैं? जैसे किसी किसी का हो सकता है सेंसिटिव नेचर, ये सबसे बड़ा स्क्रू है। तो ये भी एक कविता का टॉपिक है। चंद्रशेखर भाई आपके लिए, रोया ना करो। और नागराज भाई, रूठा ना करो। ये दो टॉपिक है कविता की। पहला टॉपिक रोया ना करो, अगला टॉपिक रूठा ना करो। तो किसी किसी का स्वभाव होता है सेंसिटिव नेचर, ये एक ढीला स्क्रू है। किसी किसी का स्वभाव है दूसरों की मदद करना, पर मदद ऐसे करते हैं कि फंसी जाते हैं। भाव बहुत श्रेष्ठ है परंतु चंगुल में फंस जाते हैं। ये भी एक ढीला स्क्रू है। मनुष्य की खोज सुख की है, उसे सुख दो चीजों से प्राप्त होता है, एक भोजन और एक काम विकार। इसलिए वो भागता है क्योंकि इन दोनों में ही हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन सब रिलीज होते हैं केमिकल्स, और तन बदन में सुख की अनुभूति होती है। जबकि ये जो सुख है ये केमिकल रिलेटेड सुख है, बायोलॉजिकल सुख है। जैसे ही इन केमिकल्स की मात्रा कम होगी शरीर उसको फिर चाहेगा। बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, ये सब इनका एडिक्शन है ही नहीं। एडिक्शन किसका है? इस सुख का, क्योंकि वो लेने के बाद शरीर में, तन बदन में, ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते, पूरा फ्लड आ जाता है और उस फ्लड में व्यक्ति अपने सुख दुख, अपनी दिनचर्या की के तनाव, दर्द, हर्ट्स, रिजेक्शंस सब भूल जाता है क्षणिक, थोड़े समय के लिए। भोजन और ये सारी चीजें तो बहुत सहज है, इसलिए किसी किसी की कमजोरी क्या है? भोजन। तो क्या लिखने आज के अपने ढीले स्क्रू जिन्हें कसने की जरूरत है, ऐसे तीन ढीले स्क्रू। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं। हर एक में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म कमजोरी चल रही है, अदृश्य। अगर हम ये कहें कि मुझ में नहीं है तो वह रहेगी, पर यदि हम स्वीकार करते हैं कि है और उस परम इंजीनियर से कहते हैं कि बाबा मेरी फिटिंग सही कर दो और मेरी स्थिति सेट कर दो, इंजीनियर इज एट वर्क, वो इंजीनियर कार्यरत है। ये ना समझो कि अब उसने छुट्टी पर गया है और गैराज बंद है, तो इंजीनियर इज एट वर्क 24/7। हाँ, तुम्हें लाइन में लगना पड़ सकता है पर नंबर आएगा जरूर, नंबर आएगा। दुविधाओं का समाधान, विशेष अमृत वेला रिफ्रेश हो, ऐसे समझो बाबा से पूछने जा रहे। क्या सोचो? बाबा से पूछने जा रहे। इस याद में रहकर फिर देखो रिस्पॉन्ड मिलता है। क्या संकल्प करना है? हम बाबा से पूछने जा रहे, बाबा की कुटिया में जा रहे, बाबा के कमरे में जा रहे। क्या करने जा रहे? बाबा से पूछने जा रहा हूं, और पूछना है बिना शब्दों से। जैसे यहां साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भाग आते थे, वैसे अव्यक्त को अपने नजदीक लाओ तो ऐसी ही महसूसता हो सकती। जैसे साकार में सहज बुद्धि में निर्णय हो जाता था, ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। अभी तक अव्यक्त रूप के इतने अनुभव नहीं किए हैं, केवल एक या दो बार पुरुषार्थ करने से आप ऐसा अनुभव कर सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर नेचुरल हो जाता है, लेकिन अभी इस बात की कमी है। यह है परमात्मा ऑब्जर्वेशंस। यदि कोई बच्चा बाबा को प्यार से याद करता है तो उसका संकल्प बाबा तक पहुंचता है, परंतु क्या? बट वह कितने समय में पहुंचता है वह आत्मा की निर्विकार स्थिति पर निर्भर है। यदि आकाश धुंधला है तो पहुंचेगा, परंतु देरी से पहुंचेगी सूरज की किरणें, और हो सकता है विकृत रूप से पहुंचेगी, जैसे उसने भेजी थी वैसे नहीं, जैसे ग्रंथ लिखा गया वैसे हम तक नहीं पहुंचता है 100 साल में। कई लोग आके उसमें ठीक ठाक करते हैं, जैसे जगदीश भाई जी ने पहला जो लेख लिखा था और बहनों को दिया था थोड़ा ठीक करने, वो इतना ठीक कर रहा, इतना ठीक किया 10-12 लोगों ने कि जो आया उसमें ओरिजिनल का कुछ भी नहीं था। इसलिए बाबा को जब दिखाया तो बाबा ने कहा अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरपोलेशन, जो शास्त्र लिखा जाता है उसमें जो बीच बीच में डाला जाता है इंटरपोलेटेड हो जाता है, शुद्ध रूप, खालिस रूप नहीं रहता है उसमें, लोग अपने अपना डाल देते हैं। मीरा ने जो कहा था, जो पद्य अभी अवेलेबल है वो मीरा के ही है, कहना मुश्किल है क्योंकि लोगों ने बीच में डाल दिया, मीरा कहे, मीरा का गिरधर गोपाल, सूर कहे, तुलसी कहे, अपनी बुद्धि से उनका नाम डाल के अपना एक बीच में ऐड कर दिया। मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और जितना आत्मा में निर्विकारीपन है उतना ही तीव्र गति से संदेश बाप दादा के पास पहुंचता है।
तो जाना और आना, संदेश का पहुंचाना भी निर्विकारी प्रताप पर निर्भर है और उसको पकड़ना भी। बाप दादा अमृत वेले बुद्धि में डैश के विशेष श्रेष्ठ संकल्प टच कराते हैं। क्या? अमृत वेले बुद्धि में महानता के विशेष श्रेष्ठ संकल्प, परंतु टच किसको हो गए? निर्विकार। तो ये थी आज की दैवी अभियंत्रिकी, सेटिंग फिटिंग, सेटिंग फिटिंग और निर्विकारिता। टॉपिक्स कविता के लिए दो टॉपिक तो दे दिए, पहला टॉपिक रोया ना करो और दूसरा टॉपिक रूठा ना करो। तीसरा टॉपिक ये चंद्रकांत भाई कविता लिखेंगे, लिख लेना, इंजीनियरिंग का। अरविंद भाई यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। टॉपिक क्या है? यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। अगला देवेंद्र भाई, ब्राह्मणों के गुनाह धर्मराज के कानून, ब्राह्मणों के गुनाह धर्मराज के कानून। सुशील भाई रंग बिरंगी माया के दाग, रंग बिरंगी माया के दाग। सुखदेव भाई मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरे गले में। अगला विट्ठल भाई अंधे की औलाद अंधे। छोटे लाल भाई जी जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। और कौन है नए में इधर? श्रीकांत भाई है। अच्छा अच्छा, श्रीकांत भाई को पहले दे देना अगर वो कहेंगे कि मुझे जाना है। हाँ इसलिए तो बोल दिया पहले ही। अलबेली आत्मा के बदलते तेवर, अलबेली आत्मा के बदलते तेवर। अगली कविता दीपाली बहन, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। अखिल भाई और ये भी टाइम है ना आपको, माया के माला के बिखरे मोती, माला के बिखरे मोती। दीपा बहन आप आए बाहर आई। और लास्ट रम्या बहन, बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ। आज की कविता आज की किसकी है? आज की कविता ये वाला दू?
शांति, हैप्पी दिवाली सभी को। कविता का टॉपिक है खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी का ठिकाना नहीं अब जगता है आत्मा का चैतन्य दीप जग। बाबा से मिलता है आत्मा को श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार। योग में जब होती है अनुभूति इस खुशी की, आत्मा होती है भाव विभोर। यह है अदृश्य खुशी जो है आत्मा का मूल संस्कार, जिससे मिलती है शक्ति अपार और जीवन हो जाता है सर्व गुणों का उपहार। इस सच्ची खुशी का ठिकाना नहीं अब, रमती है रूह खुद की रंगों में जब। है ये परे नाम मान शान निंदा स्तुति और ग्लानि से, नहीं मिलता है यह कोई व्यक्ति वैभव या वस्तु से। अभी है मौका इसे पाने का इन संगम की शुभ घड़ियों में, मत गवाना इस अनोखा समय को व्यर्थ और स्थूल बातों में। इस अनूठी खुशी का ठिकाना नहीं अब, होती है स्वयं की सत्यता की पहचान जब। मन को खुशी के सागर में डुबोने से होता है गजब, ड्रामा के हर दृश्य में होगा अजब, हर किरदार का पात्र लगेगा लाजवाब। होगी जग में चैतन्य दीप माला जागृत और सारा विश्व बनेगा एक ताज्जुब।
कविता लिखते हैं उसमें एक लक्ष्य रखना है कि वो प्रकृति के सानिध्य में जाके लिखी जाए और शांत मन में जो पॉइंट्स टच होते हैं उनको नोट कर दिया जाए, और लिखते समय ये भूल जाना है ये हमें किसी को सिखानी है, बतानी है, पढ़नी है, उस टॉपिक उस विषय के साथ एक हो जाना, उसको फील करना, उसको अनुभव करना, ये लक्ष्य रखना है। मीनाबेन, आपने भी बहुत सारी कविताएं लिखी है, रोज की डिटेल कितनी कविताएं? 100 कविताएं। तो आप भी बताएंगे इसके विषय में।
What sweet thoughts are thine? I have never heard praise of love or wine that painted forth a flood of rapture so divine. Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness. Teach me also, O divine angel, how can I become like you? O ki high consciousness, ye wisdom, ye purity, ये डिवाइन वर्च्यूज, हम सब ये चाहते हैं कि हम कैसे आप जैसे बन जाए, लेकिन ये वंडर है कि आपको सुनते सुनते ही हम उसमें ढल रहे हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई, जैसे एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हो गया, पुराना सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया और एक नई शुरुआत शुरू हुई। हर चीज़ में नए संकल्प, नया अमृतवेला, नई दिनचर्या, नया चिंतन, सब नवीनता से भर गए। उसमें से एक था जर्नी ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग भी शुरू हुआ। पहले तो ग्रेटिट्यूड लेटर्स लिखे, उसके साथ थोड़ी थोड़ी ऐसी पोएम्स लिखी थी। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है कि जब एक डायरी मैंने गिफ्ट की थी, उसमें एक पेज था कोट्स और दूसरा पेज सॉन्ग्स थे जो क्लास में बजाते हैं। तब आपने मुझे ये कहा था कि आप पोएम्स लिखो, लिख सकते हैं। तो उस वक्त तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा आई विल ट्राई, बट ये जैसे एक वरदान बन गया। सोचा नहीं था कि इतनी पोएम्स इतने कम टाइम में लिख सकेंगे, लेकिन ये भी आपके वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज और ग्रीटिंग्स का कमाल है कि असंभव संभव हो गया। सोचा था कि जब हम जाएंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ। जो 50 पोएम्स हुई थी तो आई थिंक 45 डेज में 57 पोएम्स कंप्लीट किए थे, तो उस वक्त मेल किया था और अभी 80 डेज में अराउंड 125 पोएम्स आई हैव कंप्लीटेड विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स। हाँ, तो इसको आपको ओपनिंग करना है। ये 100 है, अभी इसमें जो क्लास का लिस्ट है, पोएम लिस्ट, वो ही ऐड की है और एक टाइटल भी इसको दिया है, आनंदमयी क्रांति, ऐसे एक टाइटल भी दिया है। ये मशाल है और उसमें से जैसे फ्लावर्स निकल रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया प्लेजेंट रेवोल्यूशन। इसमें डेट वाइज सब लिखा है, जो जो टॉपिक्स जिस दिन के थे उसी हिसाब से इसमें, हाँ यहाँ के जो टॉपिक्स थे भट्टी के वो ही सारे टॉपिक्स डेट वाइज है, हाँ सब। और 15 पोएम्स जो अव्यक्तवाणी रिवीजन में करवाई थी वो है उसमें पीछे। एक और गिफ्ट भी है, वो नहीं, वो जैसे अहमदाबाद से है तो सिटी ऑफ गांधी जी, तो ये स्पिनिंग व्हील है, चरखा है, तो जैसे हमने एक्सपीरियंस में सुना है कि साइलेंस की शुरुआत गांधी जी की बुक से हुई थी, हाँ और चरखे से वो हाँ वो, और कोइंसिडेंटली थैंक यू, हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो भी 2 अक्टूबर ही था, और एक क्लास में भी ये सुना था कि गांधी जी वाई, हाँ तो वो मेडिटेशन का, उनके लिए ये मेडिटेशन था, वो इनर अवेकनिंग थी जो प्रतिपल सजगता के लिए, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव।
मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभत काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। आमले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरे, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी, उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा,
अमृत वेले की है पुकार।
ना रुक ना झुक हो जाने रादार, बढ़ चल
बन युगा।